السلام عليكم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے لوگوں جو ایمان لائے, لا تدخلوا, تم مت داخل ہو بیوت النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں, الا مگر ایوذنا لکم, تمہیں اس کی اجازت دی گئی ہے, الا تعامین, کھانے کی طرف, غیر ناظرین, مت انتظار کرنے والے بنو, نہ ہو اس کے پکنے کا, ولیکن لیکن اذا جب بعیدم تم کو بلایا جائے, فدخلوا, پس تم داخل ہو جاؤ, فاذا اور جب, پس جب تعین تم کھا لو, فانتشروا, تو تم منتشر ہو جاؤ یا چلے جاؤ, ولا مستأنسین, اور مت دلچسپی لگا کر بیٹھو, لحدیث باتوں کے لیے, ان بے شک ذالکم تمہارا یہ کانا یوذی النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت ہے, فیستحی منکم, بس فیستحی وہ شرم کرتے ہیں, منکم آپ سے, اللہ اور اللہ لا یستحی نہیں شرم کرتا, من الحق حق بات بتلانے سے. یہاں تک یوزانا ہے, یوزانا صاحب تو ان مصریہ کا لفظ نصب میں, تو آگینا یا اذن, واحد مذکر غائب فعل مضارع مجھول.
آپ کی آواز بھی بہت کم ہے. ویسے
آج تو ایکچولی میرا مائک خراب ہے اور فون بھی خراب ہے, سے لاگ ان نہیں ہو سکتا.
چلیں ٹھیک ہے, آ تو رہیے.
یوزنو واحد مذکر غائب فعل مضارع مجھول, اجازت دی, اور ناظرین نظر مصدر سے فاعل انتظار کرنے والا, اور انا جو ہے اس مصدر کا مطلب پکنا, دعیتم دعا یا دعو سے جمع مذکر حاضر فعل ماضی مجھول, اور مستأنسین تو استانسا یا استانسو استئناسن مصدر سے استئناسن یہ جمع مذکر اسم فاعل, یستحی واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف, استحیا یستحی استحیا. آگے وَإِذَا اور جب, سَأَلْتُمُوهُمْ مَتَعًا, تم کچھ مانگو, تم سامان طلب کرو ان سے, ان عورتوں سے, بس تم مانگو ان سے, مِن وَرَائِ حِجَاب, پردے کے پیچھے سے, ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, یہ تمہارے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, وما اور وما کانا لکم, اور تمہارے لیے نہیں ہے, ان کے عضو تم اعزاز پہنچاؤ رسول اللہ اللہ کے رسول کو, ولا اور نہ ان تنکیو تم نکاح کرو, ازواجہ ان عورتوں سے, مم یعنی ازواج مطہرات ہے, مم بعدہ ان کے بعد, آبادہ کبھی بھی, انا بے شک ذالکم یہ تمہارا کانا عند اللہ عظیمہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے, ان تبدو شیئن اگر تم چھپاؤ, شیئن کوئی چیز, او یا تخفوہ اس کو تبدو ظاہر کرو, ان تبدو اگر تم ظاہر کرو, شیئن کوئی چیز, او یا تخفوہ اس کو چھپاؤ, فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا بکلی شاہین علیمہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, لا جناح نہیں گناہ ہے, علیہنہ ان عورتوں پر, فی یا سامنے آنے میں, اپنے پردہ نہ کرنے میں, ابائہنہ اپنے باپوں سے, ولا ابنائہنہ اپنے بیٹوں سے, ولا اخوانہنہ اور نہ اپنے بھائیوں سے, ولا ابنائہ और ना बेटों से इखवा नहीं, ना भाइयों के बेटों से, वाला अब ना ही अखवात ही ना, और ना ही बेटों से अपनी बहनों के, वाला निसा ही ना, और ना ही औरतों से अपनी औरतों से, वाला और नहीं माँ मालकत जिनके वो मालिक हुए, ईमान होना उनके दाएं हाथ, वत्तकीन अल्लाह और डरती हो अल्लाह से, इन्ना अल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना अला कुल्ली शैन शहीदा, हर चीज पर गवाह है।
जी, यहीं
इसमें
तक था।
जी इसमें बस तुब्दू जो था, अब्दा युब्दी इब्दान से जमा मुजक्कर हाजिर फ़ेल मुदारे मरूफ,
अच्छा ठीक है, ये कब से? ओके ठीक है, जज़ाकअल्लाह। खुलासे तफसीर हम पढ़ रहे हैं। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. خلاصة تفسير میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ ان کے بیان القرآن سے ہے، کہ اے ایمان والو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو. لا تدخلوا بیوت النبی کا لفظی ترجمہ تو بنے گا کہ کبھی بھی مت جایا کرو، جایا ہی نہ کرو، لیکن تفسیر اس کی ہے کہ بے بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، یعنی جب تمہیں اجازت دی جائے ہے تو اس وقت تم جا سکتے ہو. تو جانا مضائقہ نہیں ہے، مگر تب بھی جانا ایسے طور پر ہو، کیونکہ الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین عنہ. تو اب اس کا حال بھی بیان فرما دیا کہ جب تمہیں بلایا بھی جائے تو بھی ایسے طور پر تم جاؤ کہ اس کھانے کی تیاری کے منتظر نہ رہو، یعنی وقت سے پہلے نہ چلے جاؤ، یعنی بے دعوت تو جاؤ مت، اور اگر دعوت ہو بھی تب بھی بہت پہلے سے مت جا کر بیٹھ جاؤ. لیکن جب تم کو بلایا جائے، ولیکن اذا دعیتم، جب تم کو بلایا جائے کہ اب چلو کھانا تیار ہے، تب جایا کرو. فادخلوا، پھر جب کھانا کھا چکو، فاذا طعمتم، تو فانتشروا، تو اٹھ کر چلے جایا کرو، منتشر ہو جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو. ولا مستأنسین لحدیث، کیونکہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے، تو سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، یستحیی منکم، کو تمہارا لحاظ کرتے ہیں، تم سے شرم کرتے ہیں، اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ. اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا لحاظ نہیں کرتا سے مراد یہ کہ سچ بولنے سے کسی کا پرواہ نہیں کرتا، اس لیے صاف صاف کہہ دیا گیا. اور اب سے یہ حکم کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تم سے پردہ کیا کریں گی، تو اب سے، یعنی اب اس سے پہلے پردہ نہیں تھا، اب سے جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر کھڑے ہو کر وہاں سے مانگا کرو، یعنی بے ضرورت تو پردے کے پاس جانا اور بات کرنا بھی نہیں چاہیے. یعنی ایسی خام خواہ جو ہے وہ جو پردے دار بیویاں ہیں تو ان کے قریب بلا ضرورت جانے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو اگر جانا پڑے تو پردے کے پیچھے سے. تو فرمایا کہ بے ضرورت پردے کے پاس جانا اور بات کرنا بھی نہیں چاہیے، اور سنائے کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت مزاج، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن ضرورت میں کلام کا مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ ضرورت کے تحت کلام کر سکتے ہیں. تو کیا بات ثابت ہوگی کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، लेकिन शर्त के साथ, औरत की आवाज के, जैसे कि हम पीछे सूरह अहज़ाब की आयात के तहत ही डिस्कस कर चुके हैं, तो बिला जरूरत मुजायका का नाम के अंदर नहीं है, मगर रोयत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी नजर नहीं आनी चाहिए। ये बात हमेशा के लिए तुम्हारे दिलों के और उनके दिलों के पाक रहने का उम्दा जरिया है, यानी जैसे अब तक जानिबैन के दिल पाक हैं, यानी अभी भी पाक हैं, तो इससे आइंदा भी एहतमाल अदम तहारत का मुंदफे हो गया, दफा हो गया, इससे भी दूर हो गया इससे, ठीक है, यानी अभी तो है पाक, लेकिन फ्यूचर के लिए पाकिजगी का इंतमाम हो जाएगा, जो कि गैर मासूम के एतबार से फी नफ्स ही मुहतमिल हो सकता था, ठीक है ना, कि यानी जिसका एहतमाल हो सकता था, एहतमाला यहतमिलु एहतमालन, ठीक है, तो मुहतमल हो सकता था कि जिसका एहतमाल हो सकता था गैर मासूम के दरबार से, यानी अगर कोई मासूम है जैसे कि नबी, वो मासूम है, ठीक है, तो मासूम के पास तो एहतमाल ही नहीं होता, ठीक है, कि वो गुनाह में पड़ जाएगा, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो मासूम नहीं है, ठीक है, तो गैर मासूम के अतबार से फी नफ्स ही मुहतमल हो सकता था, यानी इसका एहतमाल हो सकता था कि अदम तहारत का मामला हो जाए, यानी यहाँ पे तहारत की कौन सी, किस किस तहारत की बात हो रही है, रूहानी तहारत की बात हो रही है, नफ्स की तहारत की बात हो रही है। और हुरमत ईजा ए नबवी फिर सिर्फ फजूल जम कर बैठ जाने ही की सूरत में मुनहसर नहीं, बल्कि अलल इतलाक हुक्म है कि तुमको किसी अमर में जायज नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकल्लुफ पहुंचाओ, यानी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकल्लुफ मतलब तकलीफ पहुंचाना, तो सिर्फ ये नहीं कि उनके घर में बिला इजाजत दाखिल ना हो जाओ और वक्त से पहले ना पहुंच जाओ और देर तक बैठे ना रहो, बल्कि यानी सिर्फ ये मौके तुम्हारे लिए नाजायज नहीं है, बल्कि कोई भी मौका हो, कोई भी बहाना हो जिससे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती हो, वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है, और ना ये जायज है कि तुम आप की मकान लकुम अंतु वला वला अंतन के हूँ अजवाज हूँ मिन बाद ही अबदा, और ना ये जायज है कि तुम आप के बाद आप की बीवियों से कभी भी निकाह करो, ये खुदा के नजदीक बड़ी भारी मासीियत की बात है, और जिस तरह ये निकाह नाजायज है, ऐसे ही इसका जुबान से जिक्र करना या दिल में इरादा करना सब गुनाह है। इन तुब्दू शैअन औ तुख्फूहु, ठीक है, ये क्यों फरमाया कि दिल में भी इरादा ना करो, यानी कि निकाह ना करो बस बस, बल्कि दिल में भी ना सोचो उस तरह की बात, अगर तुम इसके मुताल्लिक किसी चीज को जुबान से जाहिर करोगे या इसके इरादे को दिल में पोशीदा रखोगे, तो अल्लाह ताला को दोनों की खबर होगी, क्योंकि वो हर चीज को खूब जानते हैं, अल्लाह ताला खूब जानता है, यानी वसवसे शैतान डाल दे तो उस वसवसे को निकाल दो दिल से, दिल में जमा के ना बैठो, उसके बारे में सोचना ना शुरू कर दो कि अगर मैं शादी कर लेता नबी की बीवी से तो कितना अच्छा होता, ठीक है, और उसके बारे में फिर सोचना ही शुरू हो गए, प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इससे अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि ये हराम है तुम्हारे ऊपर, तो यानी ये गुनाह करार दे दिया, और गुनाह हर किस्म का गुनाह उसके बारे में सोचना मना है, अगर तुम इसके मुताल्लिक किसी चीज को जुबान से जाहिर करोगे या इसके इरादे को दिल में पोशीदा रखोगे, तो अल्लाह ताला को दोनों की खबर होगी, क्योंकि वह हर चीज को खूब जानते हैं, बस तुमको इस पर सजा देंगे, और हमने जो ऊपर हिजाब का हुक्म दिया है इससे बाज़े मुस्तस्ना भी हैं, जिनका बयान ये है कि जो ऊपर जो हिजाब के अहकाम हैं उनसे कौन मुस्तस्ना है, पैगंबर की बीवियों पर अपने बापों के सामने होने में बारे में कोई गुनाह नहीं, और ना अपने बेटों के, यानी जिसके बेटा हो, जैसे कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का के बेटे भी थे, ठीक है, बाकी अजवाज के बेटे तो नहीं याद आते, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का के बेटा भी बेटे भी थे, तो बेटों के सामने, यानी किसी के जहन में एक बात आ सकती है ना कि जी जब हिजाब का ऐलान हो गया, और ये तो बहुत ही स्पेशल सिनारियो था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, तो हो सकता है अल्लाह ताला जो है वो उनको अपने बापों के सामने आने से भी मना कर दिया हो, बेटों के सामने आने से भी मना कर दिया हो, क्योंकि ये तो एक बहुत ही स्पेशल केस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, तो अल्लाह ताला ने उनको क्लियरली डिफाइन कर दिया कि नहीं, बेटों से इनका पर्दा नहीं है, बापों से पर्दा नहीं है, हत्ता के भतीजों से और भांजों से भी पर्दा नहीं है। और इसी तरीके से अपनी दीन शरीक औरतों के और ना अपनी लौंडियों के, यानी दूसरी जो मुसलमान औरतें हैं उनसे भी पर्दा नहीं है, और जो लौंडियां हैं उनसे भी पर्दा नहीं है। वह माँ वला माँ मलकत ईमान हुन्ना, ठीक है, यहाँ पर लौंडियों लौंडियां मुराद हैं। और ए पैगम्बर की बीवियों, इन अहकाम मस्कूना की तामील में खुदा से डरती रहो, किसी हुक्म के खिलाफ ना होने पाए। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर हाजिर नाजिर है, यानी इससे कोई चीज मुफी नहीं, जो उसके खिलाफ करेगा उसको सजा से डरना चाहिए। दिलों का मामला है, अल्लाह ताला दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है। तो ये तो हो गया इसके खुलासे तफसीर, जो कि बहुत ही मुख्तसर थी, लेकिन मारिफ और मसाइल जो कि अब शुरू हो रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें तो बहुत सारी तफसीलात हजरत ने लिख दी है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आयात मस्कूरा में इस्लामी मुआशरत के चंद आदाब और अहकाम का बयान है, जिसका ताल्लुक साबिका आयात से ये है कि जो आदाब इन आयात में तलकीन किए गए वो इब्तदान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के बारे में नाजिल हुए हैं, अगरचे हुक्म उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ मखसूस नहीं है। ठीक है, तो सियाक़ो सबाक या शान नुज़ूल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका और घर के अहवाल ही हैं, लेकिन हुक्म जो है वो उम्मत के लिए आम है। पहला हुक्म, दावत तआम और मेहमान की बाज आदाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीना लिहदीसिन। इसमें दावत तआम और मेहमानी के मुतअल्लिक़ तीन अहकाम का बयान है। और हुक्म अगर जैसे मुसलमानों के लिए आम है, मगर सबब नुज़ूल चूंकि खास वाक़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में हुआ, इसलिए उनवान में बुयूतुन नबी का जिक्र फरमाया गया। पहला ये है कि नबी के मकानात में बगैर इजाजत दाखिल ना हो, ला तदखुलू बुयूत नबी इल्ला अन युज़न लकुम। ठीक है ना, अब वही बात रिपीट करनी जरूरी समझते हैं कि जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जो लोग पर्दे के खिलाफ हैं, पर्दे को अच्छा नहीं समझते, ठीक है, वो कुरान से फिर कुरान को इस्तेमाल करते हैं अपनी दलील के लिए कि नहीं जी पर्दा जो होता नहीं है। तो ऐसे लोग जो है ना फिर इस यानी ये जो आयत है और इस तरह की जो दूसरी आयत है, तो उनको फिर यही कहते हैं कि ये तो खास नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के लिए था, ये आम मुसलमान औरतों के लिए तो है ही नहीं। तो अल्फाज कुरान से तो ऐसे ही लगता है कि ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के घर के मुताबिक। तो अब मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं जी ये तो सबके लिए है। तो अब वो यानी मौलवी साहब की बात क्यों माने, या ये कि जो वो जिन लोगों को अपनी दलील पेश करते हैं कि कुरान में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बारे में, तो वो लोग फिर उनकी बात को छोड़ करके मौलवी साहब की बात क्यों माने, तो वो मानने की क्या वजह होगी, मौलवी साहब की बात को तरजीह क्यों देंगे? वो इसी वजह से तरजीह देंगे क्योंकि मौलवी साहब की इज्जत है उनके सामने, ठीक है ना, उनकी नज़र में मौलवी साहब की इज्जत है, उलमा की इज्जत है, उलमा के ऊपर एतमाद है। तो अगर उनका उलमा पर एतमाद होगा तो वो उलमा की बात मान लेंगे, ठीक है ना। उन्होंने कोई बैठ करके उसूल फिता तो नहीं पढ़ लिया ना, अवामुन्नास ने, अवामुन्नास ने कोई वो यानी इबारतुन्नस और इशारतुन्नस और इक्तज़ाउन्नस ये सारे मसाइल तो नहीं पढ़ने। अवामुन्नास को तो सिर्फ सीधी सी बात है उनके सामने, उनके सामने है कि भाई उनका एतमाद किस पर है। अगर वो बेदीन लोगों के ऊपर एतमाद करते हैं तो वो बेदीन लोगों की बात मानेंगे, अगर वो उलमा पर एतमाद करते हैं तो वो उलमा की बात मानेंगे, सीधी सी बात है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, एतमाद, सिंपल एतमाद। ठीक है, तो इस वजह से ये जो बेदीन लोग हैं ये पहले अपनी अपना प्रोपेगेंडा करने से पहले ये उलमा के ऊपर आवाम के एतमाद पे हमला करते हैं कि ये एतमाद का रिश्ता पहले टूटेगा तब हमारे लिए गुंजाइश बनेगी अपनी बात करने की। ठीक है, जब तक ये उलमा पर एतमाद का रिश्ता नहीं टूटेगा उस वक्त तक हम अपनी बात नहीं कर सकेंगे, हम अपनी बात नहीं मनवा सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हर मुमकिन ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उलमा पर से अवाम का एतमाद खत्म हो जाए, पहले खत्म करते हैं फिर अपनी बदमाशी फैलाते हैं। दूसरा अदब ये है कि जब दाखिल होने की इजाजत बल्कि खाने की दावत भी हो तो वक्त से पहले आकर खाना तैयार होने के इंतजार में ना बैठ जाओ, गैरा नाजरीना इना हो। अब नाजिर के मानी इस जगह मुंतजर के हैं, ناظرون بین بمانے منتظرون، یعنی انتظرا یا انتظرون، انتظارن فہوا منتظرون. تو اصل میں اسم فاعل تو بنتا ہے منتظرون. یہاں پر نظرا ینظرو نظرن فہوا ناظرون کا اسم فاعل استعمال کیا، تو اس وجہ سے یہ بتانا ضروری ہے کہ ناظرون بمانی منتظرون ہے یہاں پر. اور لفظ اناء بکسر حمزہ، ٹھیک ہے، بکسر حمزہ کیوں لکھ دیتے ہیں کہ کوئی اس کو انا نہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، اناہو کہ اس کی انا، بلکہ اناہو ہی پڑھے. تو یہ کھانا پکنے کو کہتے ہیں، یعنی مصدر ہوا یہ انا. تو آیت میں لا تدخلو سے ایک استثناء تو اللہ ان یؤذن لکم کا لفظ، کا بلفظ اللہ کہا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے نا اس میں اللہ حرف استثناء استعمال کیا گیا، اور یہ جو دوسرا استثناء ہے وہ باللفظ غیرہ کے ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ بلا اجازت داخل ہو اور نہ وقت سے پہلے آ کر کھانا پکنے کا انتظار کرو. ٹھیک ہے، کیا پتہ لگ رہا ہے کہ دوسرا استثناء جو غیرہ کے لفظ سے بیان کیا ہے، تو اب یہ غیرہ کا لفظ اگر اللہ کے معنی میں لیا جائے، ٹھیک ہے، تو ترجمہ تو صحیح نہیں سمجھ میں آتا. اللہ ناظرین اناہو، ایسے ہی مطلب بنے گا نا کہ تم نہ داخل ہو نبی علیہ السلام کے گھروں میں. اچھا، وہی بات جو پچھلے بیان میں بھی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام کے گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک بھی کا نظر نہیں آتا، اتنے سارے گھر کہاں سے آ گئے؟ تو سارے گھر تو بیویوں کے گھر تھے، لیکن بیویوں کے گھر تو کہلائے جاتے ہیں کیونکہ بیوی گھر والی ہوتی ہے، لیکن وہ سارے کے سارے پھر شوہری کے گھر ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر بیوت نبی یہ فرمایا، اللہ یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اس کی کھانے کے لیے، اجازت دی جائے تمہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو تم کھانے کے لیے تمہیں اجازت دی جائے نا، تو اس وقت تم داخل ہو سکتے ہو. تو یہ استثناء ہو گیا. غیر ناظرین انا ہو، یعنی اس طرح سے نہ کہ تم بیٹھے ہو کھانے کا انتظار کرتے ہو، تو یہ دوسرا اللہ ہو گیا، دوسرا یعنی استثناء ہو گیا کہ تم بیٹھے ہو کھانے کا انتظار کرتے ہوئے، ایسے نہ داخل ہو. اب یہ جیسے اس کو کہتے ہیں نا، اس کا ترجمہ اردو میں اگر کریں تو غیر ناظرین اناہو، نہ کہ بیٹھے ہوئے ہو انتظار کرتے ہوئے ان کے کھانے کا، اناہو ان کے کھانے کا، یعنی ان کے کھانے کے تیار ہونے کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے نہ ہو تم، ٹھیک ہے. تو غیرہ کا جو لفظ ہے نا، یہ غیرہ کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے معنی میں استعمال تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں غیرہ کا مطلب اللہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اصل میں غیرہ کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ اللہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو آپ نے علم النحو پڑھی تھی تو اس کے اندر انہوں نے ایک فائدہ لکھا تھا کہ لفظ غیرہ کی جو اصل وضع ہے نا تو وہ استثناء کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وضع صفت کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اصل وضع جو غیرہ کی ہے عربی زبان میں وہ صفت کے لیے ہے. صفت کا مطلب کیا کہ اس کے لیے انہوں نے مثال دی تھی کہ جیسے ہمارا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کی تفسیر کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی اصل تفسیر کیا ہے، ای لا الہ غیر اللہ، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ اصل میں کیا ہے، لا الہ غیر اللہ، ٹھیک ہے. اگر اس کا ہم نحوی اعتبار سے ترجمہ کریں، ٹھیک ہے، اگزیکٹ نحوی ترجمہ کریں تو کیا بنے گا، لا الہ، یہ کون سا لا ہے، کسی کو یاد ہے یہ کون سا والا لا ہے، لا الہ کے اندر؟ آپ تو ہدایت النحو کی اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ سے تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے، یعنی آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے نا. تو یہ جو لا ہے، لا نفی جنس ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر قسم کے الہ کی نفی کر دی، ٹھیک ہے. اب یعنی हर किस्म का, यानी कोई भी इला नहीं है। अब कोई भी इला नहीं है क्या मतलब? कि अल्लाह भी इला नहीं है क्या? अल्लाह ताला भी क्या माबूद नहीं है? नहीं, बल्कि गैरुल्लाह ही, जो अल्लाह नहीं है ना वो माबूद नहीं है। क्या मतलब हुआ? गैरुल्लाह ही, ठीक है, जो अल्लाह नहीं है वो माबूद नहीं है। हम उर्दू जुबान में तो बामुहावरा तर्जुमा करते हैं ना अपनी आसानी की खातिर, तो हम क्या कह देते हैं कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो ये तो हमारी उर्दू जुबान की अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज उर्दू में हम ऐसी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर गैरुल्लाह ही जो है वो सिफत के लिए है, ठीक है। गैरुल्लाह ही जो है ना वो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर उल्टा मामला है। उल्टा मामला क्या है कि यहां पर इल्ला जो है वो इस्तिस्ना के लिए नहीं है, बल्कि इल्ला गैरा के मानी में है, ठीक है। इल्ला गैरा के मानी में है, इल्ला इस्तिस्ना के मानी में यहां पर नहीं। हालांकि इल्ला की असल वजह क्या है? इस्तिस्ना, ठीक है, वजह असली इल्ला की इस्तिस्ना है। लेकिन कलमा तैयबा के अंदर इल्ला का लफ्ज गैरा के मानी में इस्तेमाल हुआ है, और गैरा की वजह क्या होती है? गैरा की वजह होती है सिफत के लिए, ठीक है। यानी जो अल्लाह नहीं है, यानी जिसके अंदर अल्लाह वाली सिफात नहीं है, वो इला नहीं है, ठीक है। तो कोई इला नहीं है जो अल्लाह नहीं है, ठीक है, कोई इला नहीं है जो अल्लाह नहीं है, यानी जिसके अंदर अल्लाह की सिफात नहीं है। अल्लाह की सिफात क्या है? अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला करीम है, जो सारी की सारी सिफात हो गई, सारी की सारी अल्लाह ताला की सिफात है, ठीक है। तो खैर, यहाँ पर जो ये आयत है सूरह अहज़ाब वाली, तो गैर नाज़रीन इलाहु, यानी ना बैठे हुए इंतजार करते हुए, यानी जो नाज़रीन कहते हैं वो कहते हैं, नाज़रीन कौन होते हैं? इंतजार करने वाले, ठीक है। तो गैरा नाजरीना ना इंतजार करने वाले, ठीक है ना। गैरा नाजरीना मीनिंग ना इंतजार करने वाले खाने के पकने का, ना इंतजार करने वाले, ना इंतजार करने वाले खाने के पकने का, ठीक है। खैर, थोड़ी सी ना भी बहस हो गई यहाँ पर। बाकी फरमाया कि ये दूसरा इस्लाम बदलते लफ्ज गैरा है। यहाँ पर तो उन्होंने, यानी हमारी आसानी की खातिर ये फरमाया कि यहाँ पे दूसरा इस्तिस्ना जो है ना वो गैरा के लफ्ज से यहाँ पर किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ना बिला इजाजत दाखिल हो और ना वक्त से पहले आकर खाना पकने का इंतजार करो, ठीक है। तो मफहूम इसका ये बन, यही बनता है, बल्कि वक्त पर जब बुलाया जाए तो उस वक्त मकान में दाखिल हो। वलाकिन इजा दुई तुम फतखलू, तीसरा अदब यह है कि खाने से फारिग हो जाओ तो अपने अपने कामों में मुंतशिर हो जाओ। ये तीसरा अदब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का, जब काम पूरा हो जाए तो फिर उधर से उठो और मुंतशिर हो जाओ, यानी घर की मजलिस का ये अदब है। दावत के घर में बाहम बातें करने के लिए जमकर ना बैठो। फैजा तान तुम फंतशरू वला मुस्तानसीन लिहदीथ, ठीक है। मसला तो दूसरा अदब, तीसरा अदब पूरा उन्होंने एक एक करके लिख दिया है। पहला अदब यह है कि दाखिल ही ना हो बगैर इजाजत के। दूसरा अदब यह है कि जब दाखिल हो जाओ खाने की दावत हो तो भी वक्त से पहले दाखिल ना हो। और तीसरा अदब यह है कि जैसे ही वक्त खाना खत्म हो जाए तो उसके बाद बैठ करके आपस में गपबाजी ना करो, बल्कि वहां से मुंतशिर हो। मसला, ये आम हालात में है जहां आदतन मेहमानों का खाने के बाद देर तक बैठे रहना मेजबान के लिए बायस कुल्फत हो, बायस तकल्लुफ हो। दूसरा, ख्वा इसलिए कि वो फारिग होकर अपने दूसरे कामों में लगना चाहता है, या इसलिए कि उनको फारिग करके दूसरे मेहमानों को खाना खिलाना मकसूद है। और जहाँ हालात और आदात से ये मालूम हो कि खाने के बाद मेहमानों का देर तक बाहरी बातों में मशगूल रहना मेजबान के लिए मूजब कुल्फत नहीं है, वो इससे मुस्तस्ना हो, ठीक है। जैसे कभी ऐसा भी होता है कि मेजबान ने आपको जो बुलाया होता है ना वो किसी और काम के लिए बुलाया होता है, अभी आपसे तो डिस्कशन करनी है, अभी तो मीटिंग होनी है, खाना पहले खिला दिया, तो अब खाने के बाद अगर आप मुंतशिर हो, जी खाना क्या क्या कहते हैं ना हमारे यहाँ, जी खाया पिया बस निकल चलो, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा कि उल्टा आपके जाने से मेजबान को तकलीफ होगी, क्योंकि जिस मकसद से उसने आपको बुलाया था तो उस मकसद को पूरा किए बगैर ही आप चले गए। कुछ लोग होते हैं जब बयान रखते हैं तो टाइम ऐसा होता है कि पहले खाना खिला देते हैं उसके बाद बयान सुनते हैं। उमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई खाने के बाद फिर मजलिस होगी, ठीक है, तो अब सारे लोग खाना खाने के बाद अगर वहां से गायब हो गए तो फिर तो मजलिस नहीं हो सकेगी, तो ये इससे मुस्तस्ना होगा। जैसा कि आजकल की पार्टियों और दावतों में रिवाज हो गया है, ये पार्टियों और दावतों वाला रिवाज तो एक अलग मसला हो गया ना, कि वो फिर बहुत लेट नाइट सिटिंग वगैरह का मामला शुरू हो गया। दलील इसकी आयत का अगला जुमला है जिसमें इरशाद है, इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या फयस्तहयी मिनकुम व अल्लाहु यस्तहयी मिनल हक, यानी खाने के बाद बातों में मशगूल होने की ममानियत का सबब यह है कि ऐसा करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती थी, क्योंकि मेहमानों के खाने का इंतजाम जनाना मकान में होता था, ठीक है ना, जैसा आपको पता ही है कि मकान जनाने ही होते थे, वहां मेहमानों का देर तक ठहरना घर वालों के लिए मूजब कुल्फत होना जाहिर है, क्योंकि उस जमाने में शादी हॉल्स कोई पार्टी हॉल्स ऐसे तो नहीं होते थे, और ना जो है मस्जिद के अंदर खाना खिलाने का कोई ऐसा इंतजाम था, तो घरों में ही खाना होता था, और घर जो है वो बीवियों के होते, तो ये यानी वजह बता दी, यानी कैद बता दी, ठीक है कि जी इस वजह से चले जाना चाहिए क्योंकि ये तकलीफ का बायस बनता है, तो जहां तकलीफ का बायस ना बने ठीक है तो वहां पर उसका वजूद नहीं होगा। जैसे कि वो ला क्या है, ला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, तो खशियत इमलाक की कैद लगा दी, ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि औलाद को कत्ल करना शुरू कर दो अगर तुम्हें इफलास का खदशा ना हो, ठीक है, लेकिन उससे फिर फुकहा ने दूसरे मसाइल निकाले हैं। आयत में ये भी इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे मेहमानों के इस तर्ज अमल से तकलीफ पहुंचती है, मगर चूंकि खुद अपने घर के मेहमान हैं, इस हालत में उनको अदब सिखाने से हया माने होती है, मगर हक बात के इजहार में अल्लाह ताला हया नहीं करता। तो मसला इसमें फरमाया कि इस जुमले से मेहमानों के इकराम और खातिरदारी का कितना बड़ा एहतमाम मालूम हुआ कि अगरचे मेहमानी के आदाब सिखाना आप के फराइज में से था, यानी अदब सिखाना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज में से है, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन क्यों डिफरेंट थी, क्योंकि इसके अंदर अपना मेहमान होने की हालत में आप ने इसको भी मौखर किया, ठीक है, यानी आदाब मुआशरत का नबी वसल्लम का इतना ख्याल था कि चूंकि ये मेरे मेहमान है, अगर किसी और के साथ मामला होता तो बिला धड़क कह सकते थे, लेकिन अपने ही मेहमान है और मेहमानों का इकराम आपने यकीन से सुनी होंगी कि बे इंतहा मेहमानों के इकराम के बारे में सल्लम को अल्लाह ताला ने सिखलाया था और नबी सल्लम ने आगे उम्मत को सिखाया, तो इस वजह से इसको भी मौखर किया, यहाँ तक कि खुद हक ताला ने कुरान में ये अदब सिखाने का एहतमाम फरमाया, ठीक है, तो चूंकि नबी सल्लम के मौखर करने का जो मकसद था वो कोई नफसानी ख्वाहिश नहीं थी कि जी अल्लाह ताला ने एक ड्यूटी लगाई और अब उस ड्यूटी को अंजाम नहीं दे रहे किसी नफसानी ख्वाहिश की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नफसानी ख्वाहिश का कोई मसला ही नहीं था, इस वजह से नबी अलैहि सलाम के इस मौखर करने के ऊपर अल्लाह ताला ने कोई तादीबी बात नहीं फरमाई कि आप क्यों नहीं कर रहे वो काम जो मैं आपको करने को कह रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ताला ने फिर खुद अपनी तरफ से कर दिया, ठीक है, जैसा कि अगर छोटा बड़े की अदब की वजह से बड़े की किसी बात को मानने से इनकार कर दे, ठीक है ना, और उसके अंदर मोहब्बत का पहलू अदब का पहलू गालिब हो, तो इस वक्त बड़ा जो है ना वो छोटे को फिर डांटता डपटता नहीं है बल्कि वो काम खुद कर देता है। इसकी एक और मिसाल मिलती है हमें, इसको याद है वो मिसाल, आप लोग तो पढ़ भी चुके हैं, बड़े ने छोटे से काम करने को कहा लेकिन छोटे ने बड़े की गायत अदब की वजह से, जी माशाल्लाह सूरह फतह के अंदर, ठीक है, बैत रिजवान के वक्त, बल्कि सुलह हुदैबिया के वक्त जब नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया था कि भाई मेरे नाम को मिटा दो, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया, अल्लाह के नबी की बात का इनकार कर दिया, लेकिन ये इनकार किस वजह से किया था, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अदब की वजह से कि मैं आपके नाम को कैसे मिटा सकता हूँ, उस वक्त क्या किया था नबी अलैहिस्सलाम ने, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा भी नहीं कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसको लेकर के खुद मिटा दिया और खुद जो है वो उस इबारत को तब्दील करके लिख दिया, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कोई चीज नहीं लिखी, राइट, लेकिन उस वक्त जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजजा भी जाहिर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक तहरीर लिख दी जो कि जिंदगी भर कभी नहीं लिखी थी, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही सूरत नजर आती है। अल्लाह ताला ने एक फर्ज लगाया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहतमाम नहीं किया, अल्लाह ताला ने खुद कर दिया। ठीक है। दूसरा हुक्म औरतों का पर्दा। वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम वकुलूबिहिन्ना। इसमें भी अगरचे सबब नुज़ूल के खास वाक़े की बिना पर बयान और ताबीर में खास अज़वाज मुतहरात का जिक्र है, मगर हुक्म सारी उम्मत के लिए आम है। खुलासा हुक्म का यह है कि औरतों से अगर दूसरे मर्दों को कोई इस्तेमाली चीज़, बर्तन, कपड़ा वगैरह लेना ज़रूरी हो तो सामने आकर ना लें, बल्कि पर्दे के पीछे से मांगें। और फरमाए कि यह पर्दे का हुक्म मर्दों और औरतों दोनों के दिलों को नफसानी मसाविस से पाक रखने के लिए दिया गया है। ठीक है। जैसे घरों के अंदर भी जब जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो उसके अंदर गैर महरम मर्द और औरत जो होते हैं वो एक घर के अंदर जमा होते हैं। ठीक है। देवर, देवरानी, इस तरह के लोग जो होते हैं जिनसे के पर्दा है, या और गैर महरम रिश्तेदार, तो वो एक घर के अंदर एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं। तो कमरों का पर्दा तो अलग अलग होता है लेकिन फिर भी किचन एक होता है या लाउंज एक होता है, ड्राइंग रूम एक होता है। ठीक है। तो उस वजह से आमना सामना किसी सूरत में हो जाता है। तो उसमें फिर इस तरह का यानी मशायख जो हिदायत देते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि एक तो बिल्कुल आंखों में आंख डाल के बिल्कुल बात ना करें। ठीक है। लंबी चादर अपने ऊपर ओढ़ करके रखें और कोशिश करें कि आमना सामना हो ही ना। ठीक है। और अगर कोई चीज पकड़ानी है, लेनी है, जैसे कि भाभी ने सौदा मंगवाया। ठीक है। अब भाभी को जो है वो सौदा जब आपने ला करके दिया, यानी भाभी के कौन होते हैं, देवर होते हैं, रिश्तों के दारू नाम याद नहीं रहते, तो उन्होंने जब सौदा ला करके दिया तो सौदा जो है वो भाभी के हाथ में पकड़ाने के बजाय उसको नीचे रख दें कि जी आप उठा लें यहाँ से, उठा लेंगे खुद ही। ठीक है। तो इस तरीके से पर्दा मेंटेन करना पड़ता है किसी ऐसे घर के अंदर जहाँ पर के जगह इतनी ना हो कि दोनों के दरमियान अलग अलग पार्टीशनिंग और सेपरेशन वगैरह हो सके। पर्दा निस्वा की खास अहमियत। इस जगह ये बात काबिल नज़र है कि ये पर्दे के अहकाम जिन औरतों मर्दों को दिए गए हैं इनमें औरतें तो अजवाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना हैं, जिनके दिलों को पाक साफ रखने का हक ताला ने खुद जिम्मा ले लिया है, जिसका जिक्र इससे पहले आयत लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैती में मुफस्सल आ चुका है और हम पढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ जो मर्द मुखातब हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम हैं, जिनमें बहुत से हजरात का मुकाम फरिश्तों से भी आगे है। बहुत से हजरात, राइट, यानी ऐसे सहाबा थे फरिश्तों से भी आगे मुकाम था उनका। लेकिन ये सब उमूर के, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे रजा का ऐलान कर दिया ना, रजी अल्लाह अन्हु व रदु अन। ठीक है। और उनमें से बहुत से वो भी थे, अशरा मुबशरा भी थे, जिनको के जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से मिल गई थी। ऐसे हजरात तो जाहिर है कि क्योंकि एंजल्स जो फरिश्ते हैं वो क्या है, वो तो अल्लाह ताला के नौकर हैं, फकत नौकर। ठीक है ना। उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत की सिफात और खशियत की सिफात और ये सारी चीजें, तो फीलिंग्स तो फरिश्तों के पास नहीं है ना, तो फीलिंग्स तो अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है, तो इन फीलिंग्स की वजह से इंसान फरिश्तों से अफजल हो जाता है अगर इन फीलिंग्स को सही जगह पर इस्तेमाल करे तो। लेकिन इन सब उमूर के होते हुए इनकी तहारत कल्ब और नफसानी वसाविस से बचने के लिए ये जरूरी समझा गया कि मर्द औरत के दरमियान पर्दा कराया जाए। आज कौन है जो अपने नफ्स को सहाबा कराम के नफूस से पाक से और अपनी औरतों के नफूस को अजवाज मुतहरात के नफूस से ज्यादा पाक होने का दावा कर सके और ये समझे कि हमारा इख्तलात औरतों के साथ किसी खराबी का मूजिब नहीं है। कौन ऐसा दावा कर सकता है? तो ठीक है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल जो है वो इसका ख्याल रखना होता है। अच्छा। तो इससे जो है ना वो बहुत सारे यानी जरूरत के मौके जो है वो अलग होते हैं। ठीक है। जैसे कि डॉक्टर के पास जाना होता है इल्म का हासिल करने के लिए, तो वो सारी चीजें आगे डिस्कस हो रही हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरत का मौका अगर नहीं है, अच्छा जरूरत का मौका होता क्या है उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं जो कि आपकी जरूरत के अंदर दाखिल है। ठीक है। बहुत सारे, जैसे कि हम बयान के अंदर भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हर बंदे की, हर इंसान की जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं, हर दौर की जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है ना। और हर तबके की जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है ना। आज के दौर के अंदर जो एक खास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने वाले लोग हैं उनकी जरूरियात मुख्तलिफ है, जो झोपड़ी में रहने वाला है उसकी ज़रूरियात मुख्तलिफ है, जो एक छोटे मकान में रहने वाला है उसकी ज़रूरियात मुख्तलिफ है। तो ज़रूरियात जो होती हैं ये तो बहुत ही, यानी एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं ना, एक इंतहा से लेकर के दूसरी इंतहा तक, ठीक है, राइट मोस्ट जगह से लेकर के लेफ्ट मोस्ट, जो आपको जिसको कहते हैं होराइजन कहते हैं, तो ज़रूरियात का दायरा तो बहुत वसी हो सकता है, हर शख्स के लिए मुख्तलिफ, ठीक है। लेकिन बहुत ही सिंपलिस्टिक अगर आप डेफिनेशन देना चाहें जरूरत की, बहुत ही एक जैसे कि कूजे में बंद कर दें जरूरत की डेफिनेशन को, ठीक है ना, तो वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं जरूरत को, एक कूजे में बंद कर दें, एक जुमले के अंदर, एक छोटे से जुमले के अंदर उसको समेट जरूरत को। किसी के ध्यान में कभी आई ये बात कि जरूरत को आप आसान तरीन अल्फाज में कैसे डिफाइन कर सकते? जरूरत क्या चीज होती जिसके बगैर गुजारा ना हो उसको जरूरत कहते हैं। भाई गुजारा, गुजारे की तारीफ क्या होगी, व्हाट डज इट मीन टू बी गुजारा, क्या गुजारा होता है। अगर आपके पास कोई आलिम भी ना हो जिससे कि आप फतवा ले सकें कि जी ये मेरी जरूरत है कि नहीं है, ठीक है, कोई शेख ना हो जिससे कि आप अभी पूछ सकें जी मेरी जरूरत है कि नहीं, ठीक है ना, तो आप फिर अपनी जरूरत कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी जरूरत है, ठीक है ना, हाउ कैन यू डिफाइन समथिंग, ठीक है। तो इसको जो है ना वो कहते हैं, इसको कहते हैं, इसके लिए शरीयत के अंदर एक लफ्ज है जिसको कहते हैं दियानतन, ठीक है। एक होता है कवान, अवान का मतलब होता है आप किसी काजी से पूछ रहे हैं, यानी मुफ्ती से या आलिम से पूछ रहे हैं कि जी मेरी जरूरत क्या है, ठीक है, और वो उसने आपके हालात के मुताबिक आपको मशवरा दे दिया कि जी आपकी ये जरूरत है, ठीक है, या उसने फिका के हिसाब से आपको मशवरा दे दिया कि हाँ जी आपकी जरूरत है, तो इसको कहते हैं कजाअन, ठीक है, कजा के एतबार से, यानी इस्लामी शरीयत की रूह से ये चीज आपकी जरूरत है। लेकिन जब आप इस्लामी शरीयत का इल्म ना रखते हो या आपके पास कोई ऐसा बंदा अवेलेबल ना हो कि जो के आपको शरीयत के मुताबिक मशवरा दे सके, तो फिर आप अपनी जरूरत कैसे डिफाइन करेंगे? भाई ऐसा बहुत सारे मौके हो सकते हैं, सफर में हैं आप, या आपके पास कोई किसी आलिम का नंबर नहीं है, फोन नंबर नहीं है, आपके पास कोई और कम्युनिकेशन मैकेनिज्म नहीं है, आपने खुद ही डिफाइन करनी है अपनी जरूरत, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको कहते हैं दयानतन। दयानतन का क्या मतलब होता है? उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दयानतदारी, ठीक है, दयानतदारी क्या चीज होती है, दयानतन क्या चीज होती है, जो कि बंदे और अल्लाह के दरमियान होती है, डायरेक्ट बिटवीन द पर्सन एंड हिज और हर लॉर्ड, ठीक है, इसको दयानतन कहते हैं। ये दयानतन तरीका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसके इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इंसान ये सोचे कि ये जो चीज मैंने, यानी जो मेरी जरूरत है, क्या मैं अल्लाह के सामने रोज़े कयामत इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि ये मेरी जरूरत थी, क्या मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हाँ ये मेरी जरूरत थी, ठीक है, उसको इस तरीके से फैसला करना पड़ेगा, इसको कहते हैं दयानतन फैसला करना, ठीक है। अगर आपका दिल उस वक्त मुतमईन है, कंडीशन हमने पहले डिफाइन कर दी है, कोई कोई आलिम नहीं है अवेलेबल, कोई मुफ्ती अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप पूछ सकें, अब आप क्या करेंगे, हम उस सूरत की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि जी हर वक्त ही अपने दिल से फतवा लेना शुरू कर दिया, ठीक है, बल्कि इस सिचुएशन में जब आप अपने दिल से पूछें ना, तो ये पूछें कि क्या मैं अपने परवरदिगार के सामने इस चीज को जस्टिफाई कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, ठीक है ना। अगर जवाब आए कि हाँ तुम कर सकोगे, ठीक है ना, तो फिर ही आपकी जरूरत होगी, ठीक है ना, अब आप मुतमईन है कि जी हाँ मैंने अल्लाह ताला के सामने इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन के अंदर जरूर डिफाइन करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर ये हो गया कि अदरवाइज कजान जो है ना, कोई भी फैसला नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं जी मेरा नफ्स तो जो है वो बड़ा पाक है और मुझ पर तो शैतान हमला नहीं कर सकता और मुझे जो है वो यानी वसवसे नहीं आएंगे और ये तो कोई 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 भी नहीं कर सकता ना, बिकॉज अल्लाह ताला ने जो फरमाया है तो अल्लाह ताला ने तो बेहतरीन मर्दों और बेहतरीन औरतों के बारे में बात फरमा दी, तो हम कौन होते हैं अपने आप को एग्जेम्प्ट करने वाले, यानी उसूली तौर पर कजान जो है वो हम एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते अपने आप को। फिर तो हमारे पास हर चीज लगता है जरूरत से ज्यादा है। नहीं, हर चीज जरूरत से ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जो जो बाकी चीजें हैं ना उनके बारे में आप कजान फैसला कर रहे हैं, कजान दयानतन नहीं फैसला कर रहे। ठीक है, जब भी ये जो एक मशवरे वाला ताल्लुक होता है ना, इस मशवरे वाले ताल्लुक को, या ये कि मशवरा वाला ताल्लुक तो बाहर से इल्म, मशवरे को दूसरे अल्फाज में आप क्या कह सकते हैं, मशवरे के लिए दूसरा लफ्ज ये इस्तेमाल करते हैं कि बैरूनी जराए से इल्म हासिल करना। मशवरे का की क्या तारीफ कर सकते हैं, बैरूनी जराए से इल्म हासिल करना। और बैरूनी जराए कौन होता है, शेख होता है या आलिम होता है, मुफ्ती होता है, बैरूनी जराए से इल्म हासिल करना। ठीक है ना, तो हम अपनी जो जरूरियात डिफाइन करते हैं वो या तो बैरूनी जराए से इल्म हासिल करके डिफाइन करते हैं यानी मशवरा करके, या ये कि जो हमारे अंदरूनी जराए होते हैं इल्म हासिल करने के उनकी बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि हमारी जरूरत है। और वो होता है वो किताबों का मुताला या बयान सुनना या ऐसे जो हमारे घराने के अंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग में मशवरे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अपने घर के अंदर चीजें रखी हुई है ना, ये कजान डिफाइन की हुई है कि हमारी जरूरत है। ठीक है, ये क्योंकि हमें, हमने यानी किताबों में पढ़ा है, हमने लोगों को देखा है इस तरीके से करते हुए कि हमारे उलमा जो है वो इस तरीके से करते हैं। हमारे उलमा के घरों के अंदर भी ये चीजें मौजूद हैं, मशाइख के घरों के अंदर भी ये चीजें मौजूद हैं। मशाइख भी जो है वो गाड़ी के ऊपर सफर करते हैं, मशाइख भी जो है वो प्लेन के अंदर जो है वो यानी सफर करते हैं, बजाय इसके कि वो यानी पानी के जहाज में सफर करें या ट्रेन में सफर करें, वो भी प्लेन में सफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अजान ये अपनी जरूरियात डिफाइन करी। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये नहीं होगा कि हर चीज ही जरूरत से ज्यादा है। हाँ, अगर ना तो आपने कजान डिफाइन करी हो ना आपने दयानतन डिफाइन करी हो, ठीक है, तो फिर वो चीज कहलाएगी कि फिर इसका मतलब ये है कि आपने अपनी ख्वाहिशात बेसिकली जमा की हुई है अपने घर के अंदर। ठीक है, क्योंकि कजान भी नहीं है, दयानतन भी नहीं है, तो फिर आखिर में क्या चीज रह जाती है, नफ्स की ख्वाहिशात रह जाती है। आयात मस्कुरा के असबाब नुजूल, इन आयात के सबब नुजूल में चंद वाकयात बयान किए जाते हैं जिनमें कोई तादाद नहीं है। हो सकता है कि मजमुआ वाकयात नुजूल आयात का सबब बने हों। शुरू आयत में जो मेहमानी के आदाब बयान हुए हैं कि बगैर बुलाए खाने के लिए ना जाएं और खाने के इंतजार में ना बैठें, इसका सबब नुजूल इब्ने अबी हातिम ने सुलेमान बिन अरकम से नकल किया है कि ये आयत इन सुकला और बोझल लोगों के बारे में नाजिल हुई। सुकला और बोझल लोग यानी जो कि जमीन पर बोझ बने होते हैं, यानी गैर संजीदा किस्म के लोग, और होता है ना कि जी हर जगह ही वो हर वक्त खाने की फिक्र में रहते हैं कि जी कहीं पे खाने का मौका मिल जाए तो हम उधर पहुंच जाएं। ठीक है ना, जिसको हमारी जुबान में क्या कहते हैं, मुफ्तखोरे, मुफ्तखोरे कहते हैं ना, मुफ्ते भी कहते हैं कुछ लोग उनको, मुफ्तखोरे भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों को फरमाया कि सुखला और बोझल लोग। ठीक है, तो ये आयत उन सुगला और बोझल लोगों के बारे में नाजिल हुई जो बगैर दावत के किसी के मकान में जा बैठे और खाने का इंतजार करें, यानी संजीदा और सीनियर सहाबा कराम के बारे में ये आयत नहीं है, बल्कि जो जरा आमी किस्म के जो लोग होते हैं। यहाँ पे मुनाफिकीन का नाम ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, मुनाफिकीन के लिए नहीं, बल्कि है वो मोमिनीन ही, मुसलमान ही है, मोमिनीन ही है, लेकिन जरा इससे क्या पता लगता है कि मुआशरे के अंदर तबकात होते हैं। ठीक है ना, ये जो शरीफ तबका होता है ना, जिसको शुरफा कहते हैं या अशराफ कहते हैं, ये तबका हर मुआशरे में होता है, और अशराफ के अलावा भी एक तबका होता है वो भी हर मुआशरे में होता है, हमारे मुआशरे में भी है, उस मुआशरे में भी था। तो यहाँ पर अशराफ की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर अशराफ के अलावा जो लोग होते हैं, अगरचे के वो मुसलमान है, सच्चे मोमिन है, लेकिन वो अशराफ में से नहीं आते, तो उनके फिर चाल चलन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनके मामला डिफरेंट होते हैं। तो देखें, ये नबी अलैहिस्सलाम के जमाने का जो मुआशरा था ना, ये कोई यानी आसमान के फरिश्ते आकर के नहीं जमीन पर रहना शुरू हो गए कि यानी कुछ यानी गैर इंसानी किस्म के लोग नहीं थे, ये इंसानी किस्म के लोग थे, हमारे जैसे लोग थे ये। ठीक है, उनके अंदर भी वही जज्बात, वही कैफियात, वही मुआशरती ऊंच नीच, वही माशरती यानी जिसको स्टीरियोटाइप्स कहते हैं और इस किस्म की चीजें ना, वो उस माशरे में भी सारी चीजें थी, बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का वो मुआशा था, कोई आउट ऑफ द ब्लू किस्म का मुआशा नहीं नहीं था वो, ठीक है। तो उनकी फिर उनको किस चीज ने उठा दिया, ये है हमारा सवाल कि उनको इन सब हमारे जैसे होने के बावजूद उनको अल्लाह ताला ने किस बेसिस पर उठा दिया, किस बेसिस पर ऐसी दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमा दी, फजीलतें अता फरमा दी। ये उनकी अताअत थी, ये उनकी अताअत थी अपने नफ्स को, अपने मुआशरती जो जो उनका बैगेज था उस बैगेज को दबा देना, अपने तकाजों को दबा दिया था उन्होंने, अपने नफ्स को कुचल दिया था उन्होंने, इसकी बेसिस पर अल्लाह ने उनको उठाया था। इसलिए नहीं कि कोई वो अजीबो गरीब किस्म के लोग थे, नहीं, अजीबो गरीब किस्म के बिल्कुल भी लोग नहीं थे। तो उनमें भी ऐसे लोग थे, सुकला और बोझल किस्म के लोग हमारे यहाँ भी होते हैं। इमाम अब्द बिन हमैद ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि ये आयत उन बाज लोगों के बारे में नाजिल हुई जो इंतजार में रहते थे और खाने के वक्त से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में जाकर बैठ जाते थे और बाहिमी बातों में मशगूल रहते थे, यहाँ तक कि खाना तैयार हो जाता तो इसमें शरीक हो जाते थे, ठीक है। अब हम हमारे जहन में क्या होता है कि सहाबा कराम जो है ना वो तो रोबोट्स की तरह से रहते होंगे, हर वक्त भागते रहते होंगे, जिहाद करते रहते होंगे, हर वक्त जो है ना वो नमाजें पढ़ते रहते होंगे और हर वक्त जो है वो तिलावतें करते रहते होंगे और बस बस यही होगा उनकी जिंदगी के अंदर। नहीं, ऐसे नहीं है, वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते थे, तिलावतें भी करते थे, तिलावतें नहीं भी करते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, नमाजें नहीं भी पढ़ते थे, जिहाद भी करते थे, जिहाद नहीं भी करते थे, राइट, खामोश भी रहते थे, खामोश नहीं भी रहते थे, ठीक है ना, जिस तरह से कि एक नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी होती है, ठीक है। तो उनमें ऐसे लोग भी थे जो जाकर के बैठ जाते थे, ये खाना जैसे फारिग किस्म के लोग होते हैं माशाल्लाह से, सहाबा कराम वो तो उनकी अतात की वजह से तो वो तो बढ़ गए ना आगे, लेकिन ये आदात वगैरह थी मौजूद। ऐसे लोगों के लिए हिदायत जारी हुई जो शुरू आयात में मजकूर है, यानी फर्क यहीं पर आया, जब अल्लाह की तरफ से हिदायत आ गई तो अब उसके ऊपर उन्होंने चूं चरा नहीं किया कि नहीं जी ये तो हमारी आदत है, हम तो इसको नहीं छोड़ सकते, हमने तो ऐसे ही करते रहना, नहीं, जब हुक्म आ गया मान लिया, टल गए उधर से, हट गए वहां से, ठीक है ना, आइंदा नहीं आया नबी अलैहिस्सलाम। ये खास बात थी सहाबा की। ये वाकयात पर्दे के अहकाम नाजुल होने से पहले के हैं, जब आम मर्द जनाना मकान में आते जाते रहते थे, ठीक है। यानी अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो जो देख दीनदार लोग होते हैं, पर्देदार घराने, हम तो तस्वुर नहीं कर सकते ना कि कोई बाहर से भाई साहब जो है वो टहलते हुए हमारे घर के अंदर दाखिल हो जाए, राइट। लेकिन उस वक्त ऐसा होता था, इस हिजाब के अहकाम के आने से पहले ऐसे ही होता था, ठीक है। आम मर्द जनाना मकान में आते जाते रहते थे। दूसरा हुक्म, जनाना मकान से क्या मुराद कि जो एक होता है ना जैसे पंचायत का मकान होता है, पर ये घर बनाया हुआ है कि जी यहाँ पे पंचायत होती है, यहाँ पे जिरगा होता है, यहाँ पे जो है ना वो जो सोसाइटी के लोग बैठते हैं और आपस में मशवरे करते हैं, वो मर्दाना मकान होता है, ठीक है ना। बाकी जो रिहायशी मकान होता है जिसके अंदर बेडरूम भी होता है, जिसके अंदर किचन भी होता है, जिसके अंदर बाथरूम, बाथरूम तो खैर उस जमाने में नहीं होता था, वो जनाना मकान होता है, ठीक है। दूसरा हुक्म जो औरतों के पर्दे से मुताल्लिक है, इसके शान नुज़ूल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की दो रिवायतें हैं। एक रिवायत हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से यह है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपके पास नेक व बद हर तरह के आदमी आते जाते हैं, अगर आप अजवाज मुतहरात को पर्दा करने का हुक्म दे दें तो बेहतर मालूम होता है। इस पर यह आयत हिजाब नाजिल हुई, ठीक है, क्योंकि आम सहाबा भी मौजूद थे और मुनाफिकीन भी उस मुआशरे के अंदर मौजूद थे जो कि यानी काफिर थे, अंदर से काफिर थे, ऊपर से मुनाफिकीन थे, लेकिन अंदाजा तो हो जाता था कि ये इस बंदे के अंदर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो तो बहुत बड़े यानी फारूक थे, फारूक आजम, ठीक है। तो उनको तो अल्लाह ताला ने इतनी बसीरत दी थी ना कि अंदाजा तो हो जाता था उनको कि भाई ये बंदा जो है वो उसके चाल चलन ठीक नहीं है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा मशवरा दिया, ठीक है। देखिए, मशवरा, अल्लाह के नबी जिनके ऊपर जबरील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं, जिनके अल्लाह ताला ने जो है वो मेराज हो चुकी थी उस वक्त, ये मदीना मुनव्वरा का वाक़या है, मेराज हो चुकी थी, अल्लाह ताला से कलाम हो चुका था, लेकिन नीचे से जो यानी खैर ख्वाही वाला मशवरा होता है ये फिर भी जारी था, ठीक है। यानी नीचे वालों की तरफ से मशवरे वाली सुन्नत फिर भी जारी थी, नीचे से मशवरा आ भी रहा था, ऊपर से मशवरा सुना भी जा रहा था, उसके ऊपर डांट डपट करके जाना, उसको चुप नहीं करा दिया जा रहा था, ठीक है, बल्कि मशवरा सुना जा रहा था। हाँ, हुक्म नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से तो नहीं आ सकता ना, हुक्म तो अल्लाह की तरफ से आएगा। इस वजह से फिर अल्लाह ताला का कुरान नाजिल हुआ, तब नबी अलैहिस्सलाम ने उस मशवरे को के ऊपर अमल दरामद भी फरमा दिया। सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल मनकूल है कि उन्होंने फरमाया, वाफ़क़तु रब्बी फ़ी सलासिन, मैंने मुवाफ़क़त की अपने रब के साथ तीन चीज़ों। एक ये कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुकाम इब्राहिम को अपनी जाए नमाज बना लें, इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, वत्तख़ज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, यानी जो तवाफ के बाद जो वाजिब तवाफ पढ़ी जाती है वो मकाम इब्राहिम पर पढ़े। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगहों पर नमाज पढ़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पर वो वाली नमाज पढ़े। और मैंने आदर सल्लम से यह अर्ज किया कि आप सल्लम के अजवाज मुतहरात के सामने हर नेक बद इंसान आता है, बेहतर हो कि आप उनको पर्दा कराएं। इस पर आयत हिजाब नाजिल हो गई, और जब अजवाज मुतहरात में बाहिमी गैरत और रश्क बढ़ने लगा तो मैंने उनसे कहा कि अगर रसूल तुम्हें तलाक दे दें तो बईद नहीं कि अल्लाह आप सल्लम को तुमसे बेहतर अजवाज अता फरमा दें। चुनाचे ठीक उन्हीं अल्फाज के साथ कुरान नाजिल हो गया। ठीक है, क्या अल्लाह ताला ने नबी रसूल सलाम के सहाबा को और फारूक आजम को कैसा खसूसी मकाम अता फरमाया था। फायदा, अब फायदे में एक पॉइंट लिखते हैं कि हजरत फारूक आजम अल्लाह ताला का अपने कलाम में अदब काबिले नजर है, कि बजाहिर कहना यह था कि तीन चीजों में मेरे रब ने मेरी मुवाफकत फरमाई, क्योंकि पहले बातें किसने करी थी, पहले कुरान में तो नहीं आई थी, पहले उमर फारूक ने बातें करी थी। ठीक है, तो ऑर्डर इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस वजह से कह तो ये सकते थे कि मेरे रब ने मेरी मुआफ़त फरमाई, लेकिन इसके अंदर बेअदबी थी। ठीक है, गोया कि अल्लाह ताला मेरी बात मान रहा है। ठीक है, तो इस तरह तो नहीं कहना चाहिए ना, अदब के खिलाफ है। इस वजह से फरमाया कि मैंने अपने रब के साथ मुआफ़त फरमाई। तो अदब में ऑर्डर भी जो है वो, यानी ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसको पहले जिक्र किया किसको बाद में। बाकी आप लोगों को अदब के ऊपर एक बहुत ही अच्छी तहरीर नजर से गुजरी थी, तो वो भी आज भेजी है, इसको जरूर से पढ़िएगा। एक दूसरा वाक्य है, हजरत अनस रतान की रवायत से सही बुखारी में आया कि हजरत अनस ने फरमाया कि आयत हिजाब की हकीकत से मैं सबसे ज्यादा वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं इस वाकये में हाजिर था जबकि हजरत ज़ैनब बिन्त जहश निकाह के बाद रुख्सत होकर हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुई और मकान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे के लिए कुछ खाना खाना पकवाया और लोगों को दावत दी। खाने के बाद कुछ लोग वहीं जमकर आपस में बातें करने के लिए बैठ गए। तिर्मिजी की रिवायत में है कि हजरत सल्लम भी वहीं तशरीफ रखते थे और उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा भी उसी जगह पर मौजूद थी, जो हया की वजह से दीवार की तरफ अपना रुख फेरे हुए बैठी थी। ठीक है, अब ये खास बात याद रखने की है, क्योंकि पर्दे के अहकामात आए नहीं थे, लेकिन हया एक ऐसी चीज है कि जो कि अल्लाह ताला ने औरतों में रखी है, और शरीफ औरतें यानी जो यानी इल्म वाली होती हैं, अदब वाली होती हैं, अच्छे घराने वाली होती हैं, वो हया का वैसे ही ख्याल रखती हैं। जैसे कि ये तो यानी बहुत ही करीब करीब था पर्दे के काम के आने के, राइट, कि ज़ैनब अल्लाह जो है वो हया की वजह से अपना रुख उस तरफ करके बैठी हुई थी। लेकिन इससे कितना अरसा पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और शोएब अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी उनका वाकया कुरान के अंदर, ठीक है, कि वो हया के तरह एक तरीके से चलती भी आई थी। तो पर्दे के अहकाम अलग चीज है और हया का होना ये अलग चीज है। ठीक है, तो हया जो है वो इवन बिफोर पर्दा वो इन औरतों के अंदर मौजूद थी। अब कितनी अजीब सी बात लगती है ना कि अपने ही घर के अंदर बैठी हुई है लेकिन दीवार की तरफ रुख करके बैठी हुई है। चेहरे का पर्दा ऑब्वियसली उस जमाने में नहीं था, तो रुख जो है वो कैसे, यानी फिर कैसे अपने चेहरे को छुपाया। चेहरे को छुपाने का ये तरीका था ना कि एक पर्दा की तरफ, यानी ना वो किसी मर्द को देखें और ना कोई मर्द उनको देख सके। दीवार की तरफ रुख करने का क्या मतलब हुआ। इन लोगों के इस तरह देर तक बैठने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और दूसरी अजवाज मुतहरात के पास मुलाकात और सलाम के लिए तशरीफ ले गए। जब आप फिर घर में वापस आए तो ये लोग वहीं मौजूद थे। ठीक है, क्योंकि पर्दे के अहकाम उस वक्त नहीं आए थे, तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपनी जौजा मुतारमा और इन दूसरे मर्दों को उसी एक मकान के अंदर छोड़ करके बाहर तशरीफ ले गए। ठीक है, क्योंकि एक एक मैसेज देना मकसूद था, या एक नागवारी का एक मामला चल रहा था, तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो अपने फिर यानी एक दूसरा यानी क्या कहते हैं कि जो अगरचे के पर्दे के अहकाम नहीं आए थे, लेकिन पर्दे के अंदर जो दूसरी लेवल ऑफ रिलैक्सेशन है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या है कि चादर का पर्दा, ठीक है। तो ये लोग उठ के अगर चले जाते तो नबी अलैहिस्सलाम और जौजा मोहतरमा जो है वो घर के अंदर अकेले रह जाते, ठीक है। लेकिन चूंकि ये लोग नहीं जा रहे थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इसके लिए दूसरा तरीका क्या इख्तियार किया कि नेक्स्ट लेवल ऑफ पर्दा उसके ऊपर ना स्टेप डाउन कर दिया। नेक्स्ट लेवल ऑफ पर्दा क्या होता है कि औरत जो है वो अगरचे के मर्दों की मौजूदगी में हो, लेकिन वो छुपी हुई हो। मर्दों की मौजूदगी में होने के बावजूद वो अपने लिबास की वजह से छुपी हुई हो, जिसको कि हिजाब बिल बुरका कहा जाता है, ठीक है। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो इस वक्त मर्दों की मौजूदगी में उसी एक एक कॉम्पाउंड के अंदर, उसी एक कमरे के अंदर मौजूद थी, ठीक है। लेकिन चूंकि अपने आप को अपने लिबास से और दीवार से छुपाया हुआ था, ठीक है, तो ये भी चूंकि एक एक अलाउड लेवल ऑफ पर्दा था, तो नबी अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए, ठीक है। अब ये चीजें जो थी ये शरी अहकाम की शक्ल में नाजिल नहीं हुई थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जो तबीयत मुबारक थी वो भी तो कुरान के मुवाफिक ही थी ना, ठीक है। अगरचे कुरान अभी नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि शिर्क की ममानियत के लिए आयात तो बाद में नाजिल हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उस मुआशरे के अंदर जिनमें सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम थे, अबू बकर सिद्दीक थे और वरका बिन नौफल थे, कि जो कि आयात के बगैर भी बुतों की परस्तिश नहीं करते थे, ठीक है ना। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनका मिजाज ही शिर्क के खिलाफ था। बिल्कुल इसी तरीके से हया जो है वो अगरचे के पर्दे के अहकाम नहीं आए तो हया उसके बावजूद इन लोगों में मौजूद थी। उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को भी जो है ना वो पर्दे का जो 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 एक 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 वो होती है यानी पर्दे की जो कैफियत है नबी अलैहिस्सलाम के अंदर पहले से मौजूद थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर भी ये गैरत वाली कैफियत पहले से मौजूद थी, अहकाम के आने से पहले ही मौजूद थी। बहुत दफा हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अहकाम का हमें बाद में पता चलता है, ठीक है ना, लेकिन जो चीज नापसंदीदा दीन में होती है ना, अहकाम का इल्म होने के बावजूद वो हमें बुरी लग रही होती है, ठीक है ना। हालांकि हमें पता भी नहीं है कि ये दीन ने मना किया, ठीक है, लेकिन एक तबीयत के अंदर एक कराहियत अल्लाह ताला पहले से पैदा फरमा देते हैं, हुक्म का तो बाद में पता लगता है, ठीक है ना। तो यही मामला जो है वो सहाबा कराम के साथ भी था। तो नबी सल्लल्लाहु वहां से उठ करके बाहर तशरीफ ले गए, और बाहर जाकर के फिर उन्होंने ऑब्वियसली टाइम जाया तो नहीं करना था ना, तो टाइम को फिर कैसे यूटिलाइज किया, अपनी बीवियों के पास ही गए, ठीक है, क्योंकि औरतों के तकादा उस वक्त था नहीं, तुम्हें बीवियों के पास तो जाना है, ठीक है। तो वो एक एक जेन्युइन वे ऑफ पासिंग टाइम है बीवियों के पास जाना। तो दूसरी अजवाज मुतहरात के पास मुलाकात और सलाम के लिए तशरीफ ले गए, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि जो भी आपके पास ऐसा वक्त हो ना जो कि आपकी प्लानिंग का हिस्सा ना हो, तो उस वक्त में भी जो है ना वो कोई फजूल काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उस वक्त को भी जो है वो किसी खैर ही के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस वक्त को जो ऑब्वियसली इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान कि अभी निकाह हुआ है, अब निकाह के बाद जो है वो प्लानिंग तो यही होती है कि भाई बीवी के साथ वक्त गुजारें, लेकिन आउट ऑफ द प्लान जब नबी अलैहिस्सलाम को एक फारिग वक्त मिल गया तो उस फारिग वक्त को बैठ करके जाया नहीं किया, बल्कि एक खैर का काम कर लिया, विच इज विजिटिंग द वाइव्स, वो बीवियों के पास तशरीफ ले गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में वापस आए तो ये लोग वहीं मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लौटने के बाद इन लोगों को एहसास हुआ तो मुंतशिर हो गए। अब इन लोगों को एहसास हुआ कि हाँ वाकई लगता है कुछ ज्यादा ही हम बैठ गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अंदर तशरीफ लाए तो थोड़ा सा वक्त गुजरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बाहर तशरीफ लाए, मैं वहां मौजूद था, यानी अनस जो कि घर के खादिम के तौर पर रहते थे वो मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत हिजाब जो उसी वक्त नाजिल हुई थी पढ़कर सुनाई, या अय्युहल लजीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी अलाया। हजरत अनस ने वाकई नकल करके फरमाया कि मैं इन आयात के नजूल में सबसे ज्यादा करीब हूँ कि मेरे सामने ही नाजिल हुई हैं, यानी नाजिल तो वो थोड़ी देर पहले हो चुकी थी लेकिन सबसे पहले सुनने वाले यही थे अनस। आयात हिजाब के नजूल के असबाब में ये तीन वाकयात रवायात हदीस मशहूर है, इनमें कोई तारुज नहीं, हो सकता है कि इन वाकयात का मजमू ही इन आयात के नजूल का सबब बना हो। ठीक है, तीसरा हुक्म जो है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर अहकाम हिजाब की तफसीलात उसके बाद ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। किसी को कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, वो इस क्लास को नहीं है, चलो क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।